تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، فرشتوں نے کہا کیا آپ بناتے ہیں اس کو جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کی تعریف اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط اگر دیکھیں تو ابھی تک ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے بعد ہدایت کے اعتبار سے چار قسم کے انسان دیکھے: متقین، کافرین، منافقین اور فاسقین. اور پچھلے رکوع کی آخری آیتوں میں ہم نے یہ بات بھی دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی خبر دی کہ هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، میں نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. وہاں بھی لفظ فی الارض آیا، فی السماوات نہیں کہا تھا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زمین کی چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے آسمان کی چیزوں کے بعد. لہٰذا اب ضرورت پیش آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات سجا دی، سنوار دی، اس کی ساری چیزیں لگا دیں، تو اب اس کو برتنے والا، اس کو استعمال کرنے والا بھی کوئی ہو. تو لہٰذا یہاں سے اب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں پہلے انسان کی بات بتاتے ہیں. اور لوگوں کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہماری کیا ابتدا تھی، کہاں سے اٹھا، کیا ہوا، کس طرح سے ہوا. تو اس رکوع میں انشاء اللہ تعالیٰ بہت سارے شبہات کا ازالہ بھی ہوگا جو لوگوں کو انسان کے ناطے سے ہوئے، کہ مثلا کسی نے کہا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بندر سے گریجولی ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، اور اس میں ڈارون کا نام آتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ آخر اس دنیا میں انسان کس روپ میں آیا اور کیسے ہوا. فرمایا وہ اس قالا، اور جب کہا، اس میں وہی اس گروہ ہے جو پیچھے بات ہو گئی، یاد کرو، یعنی کسی بھی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور قرآن پاک کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ واقعات کو بیان کر کے لوگوں کی ہدایت کو آسان کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی دوسرے کی بات سنتا یا پڑھتا ہے تو پھر اس کو اپنے لیے بھی اس میں سے عمل لینا آسان لگتا ہے. تو گویا کہ وعظ، اور جب، قالا کہا، کس نے کہا؟ ربو کا، تیرے رب نے. کس کو کہا؟ للملائکتی، فرشتوں کو کہا. کیا کہا؟ انی جائلوں فی الارض خلیفہ. آپ چاہیں تو اتنے حصے کو انورٹڈ کاماز میں کر لیں، جیسے انگلش زبان میں جب کسی کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو دونوں طرف کامے ہوتے ہیں، بریکٹس لگا لیں، ہائی لائٹ کر لیں. لیکن یہ وہ لفظ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے فرشتوں کے لیے. جائل کون ہے ادھر؟ اللہ کی ذات. شاید اس جملے کو سنتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا، اور یہ انسان کو دی جانے والی عزت تھی، تکریم تھی. سورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے ولقد کرمنا بنی آدم، اور بے شک ہم نے بنی آدم یعنی آدم کے بچوں کو عزت دی. تو عزت کی یہ ایک قسم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا. دوسری بات، کیا بنانے والا ہوں؟ فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانے والا ہوں. یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو خلیفہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور خلافت کیا ہوتی ہے. اور اس پہ بہت ساری مختلف چیزیں لوگوں نے جب سمجھی، ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں نا، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ نعمتیں ہوتی ہیں جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، حسی نعمتیں کہہ لیں، उसको सूरी नेमते स्वाद से, जैसे सूरत होता है सूरी नेमते भी कहते हैं। ये वो नेमते होती हैं जिनको महसूस किया जा सकता है, मसलन खाना पीना, रुपया पैसा, घर जायदादें वगैरह। दूसरी वो नेमते होती हैं जिनको महसूस नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उनको मानवी नेमते कहते हैं, यानी मानवी। मसलन इज्जत, कोई आप में से मुझ में से इज्जत को छू नहीं सकता, ना देख सकता है। आबरू, खुशी, मुसर्रत, इल्म, ठीक है। अब ये वो नेमते होती हैं जो महसूस नहीं की जा सकती लेकिन होती हैं। पिछले रुकू में अल्लाह ताला ने हिस्सी नेमतों का तذکرہ किया था कि देखो तुम्हारे लिए मैंने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, और वो सारी बातें जो पीछे आप पढ़ चुके। अब इस रुकू में अल्लाह ताला मानवी नेमतों का तذکرہ करेंगे कि वो नेमतें जो आदम अलैहिस्सलाम को दी गई, मसलन इल्म की दौलत दी गई, फिर फरिश्तों से सजदा करवाया गया, इज्जत दी गई, फिर इसी तरह इंसान को ये एहसास दिलाया गया कि देखो तुम अल्लाह की तख्लीक हो, अपनी बनाई हुई चीज़ इंसान को बड़ी प्यारी होती है, अल्लाह ताला ने भी इंसान को अपने हाथ से बनाया। सूरत अल्लाह राफ में हम पढ़ेंगे, खलकतु बी यदी, मैंने अपने हाथ से बनाया तुझको, मोहब्बत की बात है। अब जिसको अल्लाह ताला अपने हाथ से बनाए वो पहले बंदर कैसे हो सकता है, सोचने की बात है। दूसरी बात इससे ये पता चलती है कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा ही दुनिया के लिए किया गया था, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया गया तो क्या कहा गया, इन्नी जाइलुम फिल अर्दी खलीफा, इंसान को पैदा ही ज़मीन के लिए किया गया। क्योंकि आगे आप सुनेंगे अभी कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल दिए गए, तो कुछ लोग वहाँ पेश करते हैं बात कि अच्छा हाय क्यों फल खाया, रहते जन्नत में, हम भी वहीं थे। तो याद रखिए कि इंसान कोई गलती की वजह से दुनिया में नहीं आया या अचानक नहीं हो गया, अल्लाह का प्लान ही ये था, पैदा ही इंसान दुनिया के लिए किया गया था। ये अलग बात है कि कुछ अरसा उसको ऊपर रखा गया। फिर अगली बात यह है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये क्यों कहा, क्यों बताया कि मैं बनाने वाला हूँ, क्या अल्लाह ताला इजाज़त तलब कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्ला। तो बात तो यह है कि अल्लाह को तो किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। फिर फरिश्तों को बताने का क्या मकसद था, तो यहाँ याद रखिए कि लफ्ज़ खलीफा में ये बात आती है कि इंसान खलीफा होगा। कैसे, लफ्ज़ खलीफा को आप एक तो इस तरह समझ सकते हैं, खलीफ एक के बाद दूसरा आने वाला, मतलब कि इंसान की एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पहले बाप फिर बेटा फिर पोता, इसी तरह दादा की कैफियत है। तो इंसान को खलीफा कहने की एक वजह तो यह है कि हम सारे इकट्ठे ही नहीं दुनिया में भेज दिए गए, एक नस्ल आती है अपना वक्त पूरा करती है फिर दूसरी आ जाती है। इसी तरह इंसान को खलीफा कहने की एक और वजह यह है कि जिन्नों के बाद दुनिया में इंसान आया, इस दुनिया में इंसान से पहले जिन्नात थे। और ये बात कुरान पाक में भी मिलती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान से पहले दुनिया में जिन्नात बसते थे, तो लिहाजा इंसानों को जिन्नों का खलीफा कहा जा सकता था इस सूरत में कि जिन्नात के बाद आया। तीसरी चीज़ लफ्ज़ खलीफा का लफ्ज़ है, खलीफा कहते हैं साहिब इक्तदार, वो हस्ती जिसको विल पावर दी गई हो, इख्तियार की च्वाइस। देखिए कि दुनिया में तीन किस्म की मखलूकात हैं जिनको अल्लाह ताला ने समझ दी है, किस चीज़ की, कि वो जो कर रहे हैं या जो उनके साथ हो रहा है उसके अंदर क्या सामने आता है। मसलन इंसान, इंसान को अल्लाह ताला ने च्वाइस दी, इख्तियार दिया, पसंद, बताओ कर लो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी है, अज़ान हुई है तुम्हारा दिल चाहता है तो मस्जिद की तरफ चलो तो चल पड़ोगे, नहीं जाना चाहते तो नहीं जाओगे, कोई घर से निकले सनमे की तरफ चले तो कदम उधर चलने लगेंगे, कोई मस्जिद की तरफ जाए तो मस्जिद की तरफ चलेगा, ठीक है। तो इंसान वो हस्ती है कि जिसके पास इख्तियार भी है, अक़ल भी है और समझ भी है। नुवल्लिही मा तवल्ला, एक जगह आएगा आगे सूरत निसा में कि हम इंसान को उसी तरफ फेर देते हैं जिधर वो तवज्जो करता है, जिधर इंसान मुड़ना चाहता है अल्लाह ताला उधर मुड़ना आसान कर देते हैं। अब ये तो इंसान की कहानी है, इससे पहले जिन्नात के अंदर भी अल्लाह ताला ने यही सिफत रखी थी। जिन्नात कौन थे? ये आग से पैदा किए गए, मिन नार इस समूम का लफ्ज़ आता है, धुएं वाली आग से पैदा किए गए। इस दुनिया पे इंसानों के आने से पहले जिन्नात थे, उनको अल्लाह ताला ने भी चॉइस दी थी, अपनी मर्जी से नेकी करो चाहे बुराई करो। फोर्स्ड नहीं थे बल्कि बताया गया था। उन्होंने अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया, इतना फसाद फैलाया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और उन्होंने जिन्नों को मार भगा के दरियाओं, समंदरों और जंगलों में निकाल दिया। यही वजह है कि अमूमन आज के दौर में आबादियों में जहाँ इंसान होते हैं वहाँ जिन्नात नहीं होते, इल्ला माशाल्लाह। अमूमन खाली जगहों पे, फिर समंदर के किनारे और इसी तरह जंगलों वगैरह में जिन्नात होते हैं, पहले भी होते थे। तो बास कहते हैं कि इंसान को खलीफा कहने का मकसद ये था कि इंसान जिन्नात के बाद आएगा और इस दुनिया में साहिबे राय होगा, बाइख्तियार के मानों में होगा, यानी इंसान को मर्जी दी है वो चाहे करे चाहे ना करे, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि जिन्नात को कहा था। फिर इसी तरह तीसरी मखलूक होती है फरिश्तों की, जिसको अल्लाह ताला नूर से पैदा करते हैं। फरिश्तों में चॉइस नहीं है, दे आर फोर्स्ड टू डू, फोर्स्ड हैं, अल्लाह ताला ने उनको बता दिया जो करना है बस वो कर रहे हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर के डाटा में एक चीज़ फीड कर देते हैं, बस क्लिक करते जाते हैं वो काम होता जाता है। फरिश्ते भी ऐसी ही मखलूक हैं कि जिनके अंदर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन इंसान जो है वो चॉइस रखता है, फरिश्ते चॉइस नहीं रखते। अच्छा, अब ये जो तीनों मखलूक हैं ना, इंसान, जिन और फरिश्ते, इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर है और वो क्या है? अना, ईगो, इगोइस्टिक है। इन तीनों को इस चीज़ की बड़ी फिक्र होती है कि लोग हमारे बारे में क्या कर रहे हैं। अब देखिए, जो अना होती है ना, वो इंसान को दूसरों से नुमाया होने पे मजबूर करती है, बाज़ दफ़ा दूसरों की किसी बात के जवाब में रिएक्शन शो करवाती है। अब होता क्या है कि इंसान, इसके दिल में भी ये ख्वाहिश है कि मैं बड़ा बनूं, मैं अपना आप मनवाऊं, यही चीज़ जिन्नों में भी है, और ये अना की जो कैफियत है ना, ये फरिश्तों में भी है। इसके बरक्स आप देखिए जानवर, मसलन कुत्ता, कुत्ते को कभी शौक नहीं आता कि मैं लीडर बनूं। बिल्ली, भैंस, यानी जानवर जो है ना, गो के किसी हद तक उनमें अकल है, इसके बावजूद उनके अंदर इस बात की कोई अर्ज नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम भी बड़े बने। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ये बात रख दी कि इन्नी जाइलुम फिल अर्दी खलीफा, मैं इस ज़मीन के निज़ाम को चलाने के लिए एक मखलूक को पैदा कर रहा हूँ। अब फरिश्तों में चूंकि वो इगोइस्टिक कैफियत थी ना, कुछ मिलना, कुछ बड़ाई का एहसास, तो कालू कहने लगे, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा, क्या तू बनाता है उसको जो ज़मीन में फसाद करेगा? इतराज़ नहीं है, क्योंकि फरिश्ते एतराज़ कर नहीं सकते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बारे में ये बात कह दी कि ला यासूना, वो नाफरमानी नहीं करते, यानी अल्लाह जो हुक्म उनको दे देता है ना, फरिश्ते उसके आगे नो नहीं कह सकते। बस हिकमत मालूम की कि अल्लाह ताला हमारे होते हुए क्या ज़रूरत थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आपके घर में कोई मेहमान आके ठहरता है, अब 2-4 दिन के बाद वो कहता है कि मैं यहाँ से उठ के दूसरे घर में मूव हो रहा हूँ, तो घर वाला कह सकता है ना कि आप बताइए कि आपको यहाँ कोई तकलीफ़ थी, क्या हम आपका हक नहीं दे सके? बस इतनी की कैफियत थी, ठीक है। या इसी तरह कोई किसी को वजीर बना दे या सदर बना दे या आपको अपने इदारे का कोई बड़ा बना दे, थोड़े दिन बाद कहा जाए कि अब आपकी जगह दूसरे को लाया जा रहा है, तो कोई फौरन पूछे क्या बात है, मैंने अपनी जिम्मेदारियां सही पूरी नहीं की? बस इतनी सी बात थी ना, ये फरिश्तों का एतराज़ था ना ये फरिश्तों का हसद था, क्योंकि आप ये तफसीरें सुनेंगे लोगों के मुँह से कि देखें फरिश्तों ने हसद किया, एतराज़ किया, नहीं, वो ऐसे तमाम मनफी जज्बात से भरी है। बस हिकमत मालूम करना चाहिए कि अल्लाह ताला वो फसाद करेगा, वयस्फिकुद्दिमा, और खून बहाएगा। सवाल पैदा होता है कि फरिश्तों को कैसे पता चला कि इंसान ये करेगा, तो इसका जवाब यह है कि जिन्नात के हाल पे कियास किया। इससे पहले जिन्नात चूंकि यही बात कर चुके थे, इसलिए फरिश्तों ने ये सोच लिया कि जब उन्होंने ये किया तो ये भी करेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी वजह इसकी ये है कि लफ्ज़ खलीफा से सोच लिया। क्यों? कि खलीफा कौन होता है? जो किसी भी जगह हाकिम होता है, फैसले करता है, जैसे आज के दौर में जज का मानी ले। जूं ही आप सोचें कि इस शहर में एक अदालत है, एक कोर्ट है और फलां उसका जज है, ऑब्वियसली आपके जहन में ये आएगा ना कि अच्छा भी यहाँ कुछ कत्ल भी होते होंगे, कुछ करप्शन है, तभी तो कोर्ट की ज़रूरत है ना। तो लफ्ज़ खलीफा से फरिश्तों ने ये सोच लिया कि अल्लाह ताला फिर ये खिलाफत का काम करेगा तो यकीनन फसाद ही होगा ना, तभी होगा। एक और इसकी वजह मुफस्सरीन कहते हैं कि इंसान का खमीर बड़ी डिफरेंट चीज़ों से मिलके बना है। मसलन आप देखिए कि हमारे जिस्म में क्या है, कार्बन है ना जो हमारे जिस्म से निकलती है, कैल्शियम भी है, पानी है, फास्फोरस, सल्फर, डिफरेंट चीज़ें ना। अब इनमें कुछ ऐसी चीज़ें जिनको जब साथ रखें तो एकदम फितना फैलेगा ना, जैसे आग और पानी इकट्ठा कर दें तो एकदम धुआं उठेगा ना। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इंसान का वो मिक्सचर जिससे मिल के इंसान बना है, इसमें फतूर है। जैसे आग पे एकदम पानी फैलाएं तो एकदम फसाद फैलता है, ठंडी चीज़ को गर्म कर दें या गर्म को ठंडी कर दें, तो इस लव से भी उन्होंने सोच लिया कि इंसान के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, फिर आगे कहा वह नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तो आपकी तस्बीह करते हैं और तारीफ़ भी करते हैं और पाकी भी बयान करते हैं। यहाँ बड़ा ही प्यारा नुक्ता गौर कीजिएगा, फरिश्तों ने ये समझा कि दुनिया में आने का या इस दुनिया को बनाने का मकसद क्या है, कि बैठ के बस अल्लाह की तस्बीह करते रहो, वजीफे पढ़ते रहो और बैठ के कुछ ऐसे काम करते रहो कि जिसको करने के बाद आप अपने आप को नेक समझ लो। आज कुछ इंसानों को भी यही गलतफहमी है, नेकी के नाम पे क्या कहते हैं, वजीफ़ा पढ़ लो, आयतें पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो, ये फूंक दो, हालांकि काल इन्नी आलमु मा ला तालमून, अल्लाह ताला ने कहा मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब वो क्या था? पहली बात तो यही समझ आती है कि तुमने ज़िंदगी का ये मकसद समझा कि सिर्फ बैठ के अल्लाह की तस्बीह हम्द करते रहना, हालांकि अल्लाह ताला इंसान को पैदा कर रहा था तस्खीरे कायनात के लिए। प्रैक्टिकल इंसान होगा, इंसानों में रह के अपने हकूक और फ़राइज़ को पूरा करते हुए अल्लाह ताला को याद रखेगा। यहाँ सिर्फ इबादत और सिर्फ दुनिया का रद्द हो गया। आज दीन के नाम पे आपको दो मुख्तलिफ रवैये दिखते हैं। एक क्या कहते हैं, बैठ जाओ, लंबी सी तस्बीह ले लो, पानी में भिगो लो, सर पे कुछ बांध लो और बैठ के बस तस्बीह करते रहो। थोड़ी सी तस्बीह करके थक जाओ, उठो, 2, 4, 10, 100 नफिल पढ़ लो, वो करके थक जाओ तो फिर तुम उसके बाद कोई और ऐसा काम कर लो, खिलवत या खानाबदोशी। इसी से फिर रहबानियत आई क्रिश्चियनिटी में। इस्लाम ने ऐसे किसी तरीके को दीन नहीं कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सारा दिन बैठ के तस्बीहात की, ना आप सारा दिन बैठ के अल्लाह हु के दावे करते थे, और ना कोई ऐसी एक रात होगी कि पूरी रात जागे। हमारे यहाँ आज क्या है, फुलां बड़ा नेक है, वे क्या करता है, सारी रात जागता है। तो ये किसने कहा नेकी है? अल्लाह के नबी ने तो कोई रात ऐसी नहीं की। अल्लाह ताला तो कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, रातों को जागो भी लेकिन थोड़ा, चलो निसफ़हु अव इन्कुस मिन्हु कलीला, थोड़ा आधी नहीं तो चलो उससे कुछ कम ज़्यादा कर लो। एक मौके पर अल्लाह के नबी के पास कुछ लोगों ने आके कहा कि मैं तो शादी नहीं करूँगा क्योंकि घरदारी में पढ़ के इबादत नहीं होती। दूसरे ने कहा मैं तो सोऊंगा ही नहीं, सारी रात इबादत करूँगा। तीसरे ने कहा कि मैं तो कोई अच्छा नहीं खाऊँगा। तो अल्लाह के नबी ने उनको दोबारा बुलाया और कहा कि मैं सोता भी हूँ और मैंने शादियाँ भी की हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मैं घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाता हूँ और मैं अल्लाह का बंदा भी हूँ। और इस तरह की बात करके आपने कहा कि जिसने मेरी इबादत को कम समझा उसने ज़्यादती की। तो लिहाजा इन्नी आलमु मा ला तालमून से क्या पता चला कि फरिश्ते तो बस यही समझे कायनात का मकसद कि बैठ के तस्बीह करते रहो, हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बड़ा प्रैक्टिकल इंसान बनाया है, बीवी बच्चों में रहते हुए, घरदारियों को पूरा करते हुए और सीखते सिखाते हुए वो अल्लाह को राज़ी करे। तो लिहाजा ये बात बता दी। दूसरी बात, अल्लाह ताला को क्या पता थी जो फरिश्ते नहीं समझे, कि अगर इंसानों में कुछ बुरे होंगे तो क्या हुआ, नबुवत का ताज भी होगा तो वो इंसानियत के सर पे रखा जाएगा। अगर कुछ इसमें फिरौन और हामान जैसे लोग आएंगे भी, तो इसी के अंदर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा और मूसा और इब्राहिम और नूह अलैहि सलाम जैसी हस्तियां भी आएंगी। इंसान ही हैं जो रातों को उठ उठ के रब को मनाएंगे। ठीक है, गुनाहगार होंगे, लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जो खैर की बात है वो भी तो इंसानों में ही होगी ना। तो अल्लाह ताला ने इंसानियत की तारीफ की कि फिक्र ना करो, ये कुछ और भी करना चाहते हैं। और वो क्या कि ये मुझे खुश करेंगे, राज़ी होंगे, दुनिया में मेरे मिशन की तकमील करेंगे। और अल्लाह ताला इंसान से वो सब कुछ करवाना चाहता था जिसके लिए इस कायनात को पैदा किया। उसके बाद क्या हुआ, वह अल्लम आदम अलस्मा कुल्लहा, और सिखा दिए आदम को सारे नाम, कुल्लहा सारे के सारे। अच्छा, अब अगर आप इस आयतों का मैं कुछ आपको टुकड़े करवाऊंगी ताकि आपको बात समझनी आसान हो। अभी तक जो हमने एक आयत की है ना, अगर आप इसको एक साइड पे करके या इसका मतलब उन्वान रख लें कि इंसान की तख्लीक का मकसद, यानी तकरीम इंसानियत, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना। अब इसके बाद इस पूरे रुकू में आप तीन मुख्तलिफ एजाज देखेंगे जो आदम के ज़रिए इंसान को मिले। आयत नंबर 31 से 33, इनको आप जमा करके इसका टॉपिक लिख लें, इल्म पहला एजाज। अब देखिए कि बात ख़त्म हो गई, फरिश्तों ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बस बात समझ आ गई, कहाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अल्लाह ताला चाहते थे कि जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया है, अब फरिश्तों को वो दिखा दिया जाए। हुआ क्या, पहली नेमत मिली, वह अल्लमा, सिखाया। क्या सिखाया, आदम अलस्मा, आदम को सारे के सारे नाम। ये कौन सा इल्म था, बहुत तवज्जो से लिखिएगा, क्योंकि इस पूरे रुकू से आपको इल्म की मुख्तलिफ किस्में समझ आएंगी। और जब आप सारी चीज़ों को खलत मलत कर देते हैं ना, तो फिर कुछ समझ आके भी समझ नहीं आता। इस आयत में दुनिया का इल्म सिखाया, इल्मे दुनिया, सारी कायनात में जो चीज़ें आदम की ज़रूरत की थी ना, उनके नाम सिखा दिए, क्या होगा कैसे होगा, चूंकि फरिश्तों को उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। बाज़ कहते हैं फरिश्तों को नहीं सिखाए, सिर्फ़ अल्लम अल आदम अल अस्मा कुल्लाहा सिखाए। आदम को बुलाया, उनको सिखा दिया कि ये कुर्सी होती है, ये प्लेटें होती हैं, ये फलां, ये भूख है, ये प्यास है, ये जो चीज़ें इंसानियत के तकाज़ों की हैं वो आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी। बाज़ कहते हैं कि सिखाई सबको थी, फरिश्ते भी उस महफिल में मौजूद थे, लेकिन ना उनके मतलब की चीज़ें थी, ना उनको समझ आई। ये ऐसे ही जैसे आज आपकी इस क्लास के दौरान पीछे चंद बच्चे भी बैठे हों, अब उनकी बला से आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, कानों से बात टकराएगी, ख़त्म। या कोई ऐसा बैठा हो जिसका जहन कहीं और हो। तो बहरहाल, चूँकि सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को सिखाने की बात हुई, तो अल्लाह ताला ने सिखा दिए। पहली नेमत क्या मिली दुनिया में आने के बाद, इल्म की नेमत मिली। और कौन सा इल्म है, दुनिया का इल्म मिला। आज आप दुनियावी इल्म को कंडेम कर ही नहीं सकते। बाज़ लोग दीन के नाम पे फौरन ये कहने को तैयार हो जाते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ाने की, सब घर बैठ जाओ। तो याद रखिए, जो दुनिया का इल्म नहीं सीखता ना, वो दीन का भी नहीं सीखता। जब तक मुसलमान दुनियावी उलूम में आगे थे, प्रैक्टिकल मुसलमान थे, एक्टिव थे, तो वो पायनियर्स थे। साइंस का इल्म दुनिया को इस्लाम ने दिया, ज्योग्राफी का इल्म इस्लाम ने दिया, रियाजी, एलजेब्रा, सब नॉलेजेस मुसलमानों ने दिए। जब से मुसलमानों में ये बैठ के तस्बीहां करके दीन फैलाने वाली बात आ गई, लोग इम्प्रैक्टिकल हो गए। अल्लाह की इस कायनात का एक असूल याद रखिए, कोई जगह खाली नहीं रहती। जब मुसलमान हटे उन कुर्सियों से, उसकी जगह नॉन मुस्लिम्स आ गए। आज सारा रिसर्च वर्क उन्होंने ले लिया, सारी डिस्कवरीज उनके नाम की हैं, हत्ता कि वो चांद पे पहुंच गए। ज़रा सोचिए तो सही, अगर चांद पे पहुंचने वाला शख्स मुसलमान होता, तो क्या आज कायनात सिर्फ इस हकीकत से मुसलमान ना हो चुकी होती? आज जितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कायनात में हो रही हैं और उसकी खूबियां कुरान में मौजूद हैं, पहले से उसकी पेशिन गोइयां, आज भी आपको पता है कि वहाँ मुसलमानों का नाम लग सकता है। ऐसी एक मतलब रिसर्च गा का मुझे किसी ने बताया कि वहाँ सिर्फ कुरान पाक की उन आयात पे गौर किया जाता है जिसमें डिस्कवरीज की बात है, क़यामत से पहले ये होगा, ज़मीन घट रही है, लेकिन मज़े की बात देखिए कि वहाँ किसी मुस्लिम को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। क्यों? उनको पता, अगर आज हमारी इस रिसर्च गाह में एक मुस्लिम आ गया तो सबको मुसलमान कर देगा। वजह क्या थी कि मुसलमानों ने वो जगह छोड़ दी, वो ऐश में पड़ गए, वो दीन के नाम पे बिल्कुल रूखे फीके हो गए। आज कहते हैं जो ज़्यादा हंस ले वो दीनदार नहीं है, जो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन ले वो दीनदार नहीं है, और भूखा प्यासा मरियल गरीब सा इस्लाम दुनिया को पेश करते हैं। आज देखिए, हम तो दुनिया वालों की नज़रों में अच्छे नहीं रहे। आज इनफरादी तौर पे हम लोग ऐश करते हैं, लेकिन इज्तमाई तौर पे ना हमारे पास दुनिया के इल्म की कोई कोशिश है। आज हमारे बच्चे क्यों जाते हैं बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने? ठीक है, वो दुनियावी इल्म ले आते हैं, लेकिन वो आपके भी नहीं रहते। माएँ ऐसी कई दुखी कहानियाँ सुनाती हैं, भेजा था पैसे जमा करके बच्चे को पढ़ाने, बच्चा तो पढ़ गया, बड़ी बड़ी डिग्री मिल गई, अब माँ कोई नहीं दाखिल करने देता अपने घर में, और वो माँ बाप से आज़ाद हो गए। अगर मुसलमान दुनिया के इल्म पे गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे, तो अल्लाह ताला उसको देगा। याद रखिए कि अल्लाह के देने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। दुनिया में अल्लाह उसको देगा जो कोशिश करेगा, इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं है। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान को घास सब्ज़ दिख रही है तो काफिर को वो काली दिखे, मुसलमान को आसमान स्काई ब्लू दिख रहा है तो काफिर को वो काला दिखे। ये नहीं होगा। मन जद्दा वजदा, जो चलेगा वो पालेगा। आज हम नॉन मुस्लिम्स को बड़ी अच्छी हालत में देखते हैं, तरक्की करता देखते हैं, तो हम कहते हैं हाय अल्लाह इनसे कितना खुश है। और वो अल्लामा इकबाल का भी एक शिकवा है ना कि बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे, हैं रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पे, कि अल्लाह गैरों पे तो तेरी बड़ी रहमतें हैं, हम पे नहीं। ज़रा सोचें तो अल्लाह की रहमतें नहीं है, वो मेहनत करते हैं। आज क्यों हर बंदा भाग भाग के ऐसे मुल्कों में जाना चाहता है? क्योंकि उनको पता है वहाँ दिल है, उनको पता है वहाँ सफाई है, वहाँ लाइफ स्टाइल अच्छा है। अपने मुल्कों में क्यों नहीं जाना चाहते? अपने अपने ख्यालात है ना। तो यहाँ से बात क्या पता चली कि दुनिया का इल्म बेकार नहीं है। जितना आप दुनियावी तौर पे पढ़े लिखे होते हैं ना, उतना अल्हम्दुलिल्लाह आप दीन को भी अच्छा सीखते हैं। फिर अरदहुम अलल मलाइका, फरिश्तों के सामने पेश किया, ये देखो अब ज़रा तुम भी तो बताओ इन चीज़ों के नाम। फ़काला अम्बेऊनी बी अस्माई हाउलाई, ए फरिश्तों इन चीज़ों के ज़रा नाम तो बताओ। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को वो सारी चीज़ें दिखाई होंगी जो भी थी। बात कहते हैं इसमें मुसम्मियात, कुछ शख्सियात के नाम होंगे, कुछ चीज़ों के नाम होंगे। कहा अच्छा, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो, किस दावे में सच्चे हो? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, चलो तुम बता दो कि इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है। कालू, फरिश्ते कहने लगे, सुबहानका, पाक है तू, ला इल्मा लना, नहीं है कोई इल्म हमको, इल्ला मा अल्लमतना, मगर वही जो तूने हमको दिया। क्योंकि इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही इल्म वाला और हिकमत वाला है। क्या पता चला? फरिश्तों को पता ही नहीं था, फौरन गिव अप कर गए कि अल्लाह हमें तो नहीं पता ये क्या है, ना तूने हमें ये बताया ना हमें पता है। और उनको पता भी कैसे हो, क्योंकि उनसे मुतल्लिक कोई चीज़ ही नहीं थी। और देखिए साथ ही कह दिया सुबहानका, ये जुमला ऐसे भी तो हो सकता था ना कि कालू ला इल्मा लना, यहाँ मैनर्स भी सिखाए जा रहे हैं। जो बात ऊपर फरिश्तों ने कही थी ना कि नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, ये उसकी दलील दे दी। कलाम कितना प्यारा है। एक होता है कोई बात करके कहे हमें कोई इल्म नहीं है जी, और दूसरी बात यह कि सुबहान अल्लाह हमें ये बात पता नहीं है। अंदाज़ फ़र्क है ना, बादब बा नसीब। इल्म उसको मिलता है जो अदब रखेगा। फरिश्तों ने चूंकि कहा था कि हम तस्बीह करते हैं, तो साथ ही उन्होंने बता दिया कि अल्लाह ताला जी कालू सुबहानका, आप पाक हैं, यानी हम जो कहने लगे उस बात से आप पाक हैं, कोई हम आपकी शान में गुस्ताखी ना कर दें, लेकिन ला इल्मा लना, आपने तो हमें बताया नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही बात लगती है कि कोई उस्ताद शागिर्दों से कोई बात पूछे। बस ना इस वक्त हम रुकू नंबर 4 कर रहे हैं, तो मैं रुकू नंबर 7 की कोई बात पूछूँ तो इसके बाद 2-3 रवैये होंगे। एक जी आपने मैं बताया कब था, ले आप आगे से पूछ रहे, यानी स्टाइल है ना, मैं वो लेना नहीं चाह रही स्टाइल। और कोई कहेंगे सुबहान अल्लाह मेरा